नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और तेज करने का आह्वान किया। यमन के हुती गुट ने इसराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। असम के गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में भारत ने अंतिम ग्रुप मैच में ओमान को 189 रन का लक्ष्य दिया। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बातचीत में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नौवहन, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में विकास का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन और 2026 में भारत में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन व्यक्त किया। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और मजबूत तथा तेज करने का आह्वान किया है। भारत ने कहा कि विश्व आतंकवादियों और पाकिस्तान की सरकार तथा सेना के बीच सांठगांठ से अवगत है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के नवीनतम वीडियो पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी घटनाएं इसे और भी स्पष्ट करती हैं।
We all have to fight cross-border terrorism.
हमें हर स्तर पर आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से लड़ना होगा, चाहे वो ब्रिक्स हो, शंघाई शिखर सम्मेलन हो या कहीं और। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए समर्थन मिल रहा है। हमें आतंकवाद के सभी प्रारूपों का डटकर सामना करना होगा।
In all its forms and manifestations.
नेपाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करता है।
नेपाल के जो गतिविधियां अभी हुई उसके बाद वहां नई सरकार आई है, उस पर हम लोगों ने एक वक्तव्य जारी किया है। हमने वहां पर जो अंतरिम सरकार बनी है उसका हम लोगों ने स्वागत किया है, और स्वागत के बाद और उस वक्तव्य के बाद प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री कार्की से बात हुई, और उस दौरान हमने ये रिफॉर्म किया है कि भारत नेपाल को जो वहां पर शांति और स्थिरता लाने में जो भी मदद होगा उसको सपोर्ट करता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार, निवेश और उभरती प्रौद्योगिकी में अवसरों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। श्री गोयल के दो दिन के संयुक्त अरब अमीरात यात्रा को काफी रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों के बीच चर्चाएं तथा व्यावसायिक वर्गों ने भारत संयुक्त अरब अमीरात की रणनीतिक साझेदारी की शक्ति की पुनः पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बड़े निवेशों के जरिए संबंधों को प्रगाढ़ करने के प्रति वचनबद्धता भी व्यक्त की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता आज क्वींसलैंड में संपन्न हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर शीघ्र पहुंचने की दिशा में काम करने के लिए दोनों देशों ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के दृष्टिकोण के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ करने के साझा संकल्प को दर्शाया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच इस वर्ष 16 मार्च को हुई बैठक में इस मुक्त व्यापार समझौते का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया था। विदेश मंत्रालय और कनाडा के वैश्विक मामलों के मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श FOC का आयोजन किया। परामर्श के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव पी कुमारन ने किया, वहीं कनाडाई पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने किया। श्री मॉरिसन ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री से भी मुलाकात की। ये परामर्श इस वर्ष जून में कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद हुआ है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। यमन के हूती समूह ने इसराइल के शहरों पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन हमले करने की जिम्मेदारी ली है। मिसाइल से जाफा में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया और बीर शेवा और बंदरगाह शहर इलात पर ड्रोन से हमला हुआ। अक्टूबर 2023 में गाजा संघर्ष शुरू होने के बाद से हूती बार बार इसराइल को निशाना बना रहे हैं। इसराइल ने यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर हवाई हमले करके जवाब दिया है। अमरीका ने गाजा में तत्काल स्थायी संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई से संबंधित मांग वाले मसौदा प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 6ठी बार वीटो कर दिया है। पश्चिमी एशिया में पश्चिमी एशिया में अमरीका की उपदूत मॉर्गन ऑर्टगस ने कहा कि ये मसौदा प्रस्ताव हमास की निंदा करने या अपनी रक्षा करने के लिए इसराइल के अधिकार को मान्यता देने के लिए काफी नहीं है। सुरक्षा परिषद के अन्य सभी 14 सदस्यों ने मसौदा प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। इन सदस्यों का कहना है कि गाजा की मानवीय स्थिति हृदय विदारक है। उन्होंने इसराइल से गाजा में लगाए गए सभी सहायता प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की धमकी देने वाले यूरोपीय देशों की आलोचना की है। ईरान ने यूरोपीय देशों पर राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया। यूरोप के 3 प्रमुख देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अगस्त के अंत में ईरान द्वारा उनकी मांगें पूरी न करने पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए 30 दिन की प्रक्रिया शुरू की थी। ईरान ने इन देशों पर 2015 की परमाणु अप्रसार संधि के विवाद तंत्र का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक प्रवासी क्षेत्र में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। कल पाक अफगान सीमा के पास चमन में प्रवासी शिविर क्षेत्र में कथित तौर पर एक विस्फोट हुआ। असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का आज सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। एक रिपोर्ट।
52 वर्षीय जुबीन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में थे। जुबीन 2006 में गैंगस्टर फिल्म के गाने या अली से सुर्खियों में आए थे। उन्होंने 40 अलग अलग भाषाओं में 38,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुबीन को संगीत में समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने समय से परे संगीत से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संगीत में जुबीन के अपार योगदान ने असम की समृद्ध संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम ने आज अपना चहेता बेटा खो दिया है। अमिनुल हक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
और अब बात खेलों की। एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने अंतिम ग्रुप मैच में ओमान को 189 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ओमान ने 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 17 रन बना लिए हैं। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाए। संजू सैमसन ने सबसे अधिक 56 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और तेज करने का आह्वान किया। यमन के हूती गुट ने इसराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। असम के गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में भारत ने अंतिम ग्रुप मैच में ओमान को 189 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।